बंधन के जाने के बाद आर्या ने अपना फोन ऑन किया। उसके पास शिवी के काफी सारे कॉल्स आए हुए थे। नंदिनी के बुरे बर्ताव के बाद शिवी टूटी हुई थी। उसने शिवी से बात की तो महसूस किया कि वो ब्रोकन थी और रोए जा रही थी। शिवी ने उसे ठीक से बात भी नहीं की और कॉल कट कर दिया। आर्या को उसकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद आर्या शिवी के अपार्टमेंट के आगे था। नील और नितारा अभी भी घर नहीं आए थे और शिवी घर पर अकेली थी। घर की डोरबेल बजी तो शिवी को हैरानी हुई। वो दोनों तो लेट नाइट तक आने वाले थे, तो क्या मम्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया? क्या वो वापस आई हैं? एक पल के लिए शिवी की उम्मीदें फिर से जाग गईं। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं शिवी, उनकी बातों में नहीं आना है। मुझे तो पता तक नहीं चलता उनका कौन सा चेहरा रियल है और कौन सा फेक। शिवी दौड़कर बाथरूम में गई और अपना मुंह धोया। शिवी के दरवाज़ा नहीं खोलने की वजह से आर्या बार बार डोरबेल बजा रहा था। शिवी बाहर आई और उसने दरवाजे पर आर्या को देखा तो वो चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिछले चार दिनों से मुझे इग्नोर करने के बाद तुम्हारा दिल नहीं भरा जो अब मम्मा की तरह फिर से उम्मीदें जगाने के लिए मेरे घर के आगे खड़े हो? शिवी ने नंदिनी का सारा गुस्सा आर्या पर निकाल दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और रोने की वजह से लाल भी हो गया था। उसकी शक्ल देखते ही आर्या सब समझ गया। वो कुछ नहीं बोला और अंदर आ गया। उसने दरवाज़ा बंद किया। बहुत ज़्यादा गुस्से में हो? आर्या ने सामान्य तरीके से पूछा। हाँ, और मेरा गुस्सा होना जायज़ भी है। सब लोग मेरी एक्सपेक्टेशन तोड़ते रहते हैं, एंड यू डिड द सेम। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं लगानी है। इट वुड बी बेटर कि तुम यहाँ से चले जाओ। शिवी अभी भी गुस्से में बात कर रही थी। आर्या ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और शिवी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसने उसे गले लगाया। उसके अचानक गले लगाने पर शिवी हड़बड़ा गई। उसे इस वक्त किसी की ज़रूरत थी जो प्यार से उसे गले लगाकर उसका दिल हल्का कर सके। आर्या के गले लगाते ही शिवी फिर से रो पड़ी। चलो अब बंद भी करो बच्चों की तरह रोना, जिसे देखो आज रोने पर तुला है। आर्या उसे चुप कराने लगा। शिवी ने उसकी बात की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उसे हल्का सा मारकर बोली, तुम पहले क्यों नहीं आए? तुम्हें नहीं पता मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत थी? अरे पहले नहीं आया, पर अब तो आ गया हो ना। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह बैठो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। आर्या ने उसे सोफे पर बिठाया और उसके लिए पानी लेकर आया। शिवी ने पानी पिया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने आर्या की तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम केयर मत करो, मुझे बहुत अजीब लगता है। अच्छा, फिर ऐसा करता हूँ जैसे पहली बार मिले उसी तरह तुमसे लड़ाई करता हूँ। आर्या हंसकर बोला, अगर तुम मुझसे लड़ाई करोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम्हें पता है मैंने तुम गुस्से में तुम्हारा नंबर कंजी आंख वाली बिल्ली के नाम से सेव कर दिया है और एक कैट की फोटो भी लगाई है। हाँ, आर्या बच्चों सा मुंह बनाकर बोला, तुमने ऐसा किया मेरे साथ, वेरी बैड। मैं यहाँ अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ और तुम अभी तक मेरी आईज़ की बुराई कर रही हो। अब तो मान लो कि ये बहुत खूबसूरत है। आर्या के कहने पर एक पल के लिए शिवी ने उसकी आंखों में झांका। उसे उसकी आंखों में खुद के लिए परवाह दिखाई दे रही थी। शिवी ने तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं और कहा, लड़कियों की होती तो ज़्यादा अच्छी लगती, लड़कों पर नहीं सेट होती हैं। अच्छा तो लड़कियों पर क्या सेट होता है? रोना तो ना। चलो अब बता भी दो किस खुशी में इतना गम मनाया जा रहा है? आर्या ने फिर पूछा, मेरी मॉम ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती हैं। उन्होंने मेरे लिए लड़का सिलेक्ट किया है और मुझे कल उससे मिलने जाना है। जैसे ही शिवी ने बताया, आर्या हंसने लगा। शिवी उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। ये पेरेंट्स भी ना सुधरेंगे नहीं। तुम यकीन नहीं करोगी, मेरे घर वाले भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। घबराओ मत, हम थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। जल्दी से किसी को पसंद नहीं आएंगे, तो मुझसे टिप्स ले लेना। दो मिनट लगेंगे सामने वाले को भगाने में। बेवजह इतना रोना धोना किया और मुझे भी एयरपोर्ट से भाग कर आना पड़ा। कौन सा तुम पैदल चलकर भाग कर आए हो? गाड़ी में ही आए हो ना? अगर मेरी उससे शादी हो गई तो, या मेरे कुछ भी करने के बावजूद उसने मुझे पसंद कर लिया तो? शिवी मासूम चेहरा बनाकर अलग अलग अंदाजे लगा रही थी। आर्या उसकी बात बीच में काट कर बोला, डोंट वरी, मेरे रहते ये कभी नहीं होगा। शिवी उसके कहने का मतलब समझ पाती उससे पहले आर्या फिर बोल पड़ा, अच्छा ये सब छोड़ो, मेरे बिना तुम्हारे चार दिन कैसे बीते? मेरी मॉम यहाँ आई थी, वो बहुत प्यार से हमारे साथ रह रही थी। सच कहूँ तो कुछ देर के लिए मैं भूल गई थी कि हम दोनों के बीच कभी कोई दूरियाँ भी आई थी, पर जाते जाते उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। उन्होंने मुझसे शादी की बात की। शिवी ने उसे शॉर्ट में सब कुछ बता दिया। ठीक है, मूड ऑफ मत करो, सब हो जाएगा। अच्छा बताओ तुम्हारा कल का क्या प्लान है, अपने उस फ्यूचर हस्बैंड से मिलने के अलावा? आर्या ने मजाकिया लहजे में कहा, पर शिवी को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। उसने उसकी तरफ घूर कर देखा। अरे क्यों डर रही हो, सब हैंडल हो जाएगा, आर्या ने उसे समझाया। उसके आने के बाद शिवी का मूड काफी हद तक सही हो चुका था। जब आर्या को लगा शिवी बेहतर महसूस कर रही है, तब वो वहां से अपने घर चला गया। नंदिनी शिवी के घर से वापस आ गई थी। उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर साथ ही इस बात की खुशी भी थी कि टेढ़े तरीके से ही सही उसने शिवी को मना लिया। शाम को अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद जिम घर आए तो नंदिनी को वहां देखकर वो बहुत खुश हुए। जिम नंदिनी के पास गया और उसे गले लगाकर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना आज मैं तुम्हें लेने आने ही वाला था। तुम्हारे बिना ये घर सच में काटने को दौड़ता है। चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ और थोड़े दिनों बाद बच्चे भी आ जाएंगे। वैसे मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, नंदिनी उससे अलग होकर बोली। क्या नील और शिवी अब एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करने लगे हैं? जिम ने पूछा। हाँ, वो दोनों बच्चे काफी सही से रह रहे हैं। नील की गर्लफ्रेंड भी उनके साथ रहती है तो तालमेल बिठाने में दिक्कत नहीं होती। वेल, गुड न्यूज थोड़ी अलग है, क्या पता आपको पसंद आई या नहीं, नंदिनी ने परेशान स्वर में कहा। मेरी हर खुशी तुमसे जुड़ी है, चलो अब परेशान मत हो और बताओ कि क्या गुड न्यूज है। मैंने शिवी को मना लिया है, बस आशुतोष को कॉल करके बताने ही वाली थी इस बारे में, ताकि कल ही दोनों बच्चों की मीटिंग हो सके। जैसे ही नंदिनी ने उसे सब बताया, जिम का चेहरा उतर गया। तुमने जरूर उसे फोर्स किया होगा या इमोशनली ब्लैकमेल, जिम ने बुझी आवाज में कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही करने वाली हूँ। अगर उसे आर्या पसंद नहीं आया, जो कि होने का चांस नहीं है, तो आई प्रॉमिस मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी और फिर हम मिलकर उसके लिए कोई और लड़का ढूंढ लेंगे। नंदिनी ने कहा था कि जिम का मूड कुछ तो सही हो सके। मतलब तुम उसकी शादी करवा कर ही मानोगी? जी बिल्कुल, अब बच्चों की बातें बहुत हो गई, मैं आशुतोष से बात करके आती हूँ। आप फ्रेश हो जाएं, फिर साथ में डिनर लेंगे, नंदिनी ने कहा और अंदर चली गई। वहीं उसकी बातें सुनने के बाद जिम काफी परेशान हो गए। उन्होंने अपने मन में कहा, ओ गॉड, कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी होगा। अब तो शिवी ही कुछ कर सकती हैं। ठीक है, उसे आर्या से मिलने दो, उसके बाद मैं उससे बात करके उसे कन्विंस कर ही लूंगा कि आर्या उसके लिए ठीक नहीं है। नंदिनी को भी समझाना होगा, बेवजह बच्चे की शादी के पीछे पड़ी है, अभी तो उसका करियर शुरू हुआ है। जिम सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे थे तो वहीं नंदिनी लिविंग रूम में थी, उसने आशुतोष को कॉल किया था।
मैं आप ही के कॉल का वेट कर रहा था, कहना पड़ेगा आपने काफी टाइम ले लिया मिसेज नंदिनी, आशुतोष ने हंसकर कहा। हाँ, कई बार कुछ काम ठीक से हो जाए इसलिए टाइम लगता है। मैंने अपनी बेटी को मना लिया है और साथ ही उसे ये भी कहा है कि वो कल ही आर्य से मिल ले, उसका ऑफिस होता है, नंदिनी ने जवाब दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आर्य भी निजी रहता है, कल संडे है तो दोनों बच्चे मिल लेंगे। मैं आपको किसी रेस्टोरेंट में बुकिंग करके टाइमिंग सेंड कर दूंगा, आशुतोष ने बात करके कॉल कट कर दिया था। नंदिनी से बात करने के बाद आशुतोष ने खुद से कहा, ये लड़का भी ना, न जाने पिछले चार दिनों से कहाँ गायब है, फोन तक बंद आ रहा है। ऐसी भी कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई, कहीं ये बहाने तो नहीं बना रहा। आशुतोष को आर्य पर गुस्सा आ रहा था, उन्होंने तुरंत उसे कॉल किया। इस बार आर्य का कॉल लग गया था। मैं बस ओबरॉय मेंशन की तरफ ही आ रहा हूँ मिस्टर ओबरॉय, आपसे इतना भी इंतजार नहीं होता क्या, आर्य ने फोन उठाते ही कहा, वो गाड़ी में था। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि कल तुम उस लड़की से मिलने जा रहे हो। आशुतोष ने उसके घर आने का वेट भी नहीं किया और कॉल पर ही सब बता दिया। जी जरूर, जगह और टाइमिंग बता दीजिएगा, पहुंच जाऊंगा, कहकर आर्या ने कॉल कट कर दिया। आर्या ने एक बार भी इस तरफ गौर नहीं किया कि शिवी और वो दोनों ही कल अपने पेरेंट्स के सिलेक्ट किए हुए पार्टनर से मिलने वाले हैं। आर्या गाड़ी में बैठा हुआ बोर हो रहा था, इसलिए वो अपनी मंडे की मीटिंग देखने लगा। मीटिंग शेड्यूल देखते टाइम उसके सामने एक रिमाइंडर नोटिफिकेशन आया, ये शिवनंदिनी अय्यर के नाम से था। ओ शिट, मैं तो भूल ही गया था, पर ये कैसे होगा, मैंने उसके साथ जाने का कहा था और मुझे कल उस लड़की से भी मिलना है। ऐसा करता हूँ, इसे बोल दूंगा कि अकेली चली जाए, रिपोर्ट तो बाद में मेरे पास ही आनी है। नोटिफिकेशन देखने के बाद आर्या ने शिवनंदिनी को कॉल लगाया, ये वही नंबर था जो शिवी का पुराना नंबर था। वहीं शिवी दूसरे नंबर पर आर्या का कॉल देखकर घबरा गई, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं ही शिवी हूँ, ये इस नंबर पर क्यों कॉल कर रहा है, वो भी इतनी रात को। शिवी ने घबराते हुए कॉल पिक किया, उसने अपनी आवाज़ के टोन को भारी किया और कहा, इतनी रात को आपने मुझे कॉल किया है सर, क्या मुझे कल ओवरटाइम करना होगा? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हें यही याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि कल तुम्हारी डर्मेटोलॉजिस्ट से मीटिंग है और किसी भी हाल में उसे मिस मत करना, आर्या ने उसे याद दिलाया। ठीक है, आप भी आने वाले हैं क्या सर, शिवी ने हिचकते हुए पूछा। मैं आने वाला था पर कल का पूरा दिन मेरा बिजी रहने वाला है, तुम ऐसा करना अकेली चली जाना, मैं तुम्हें एड्रेस मेल कर दूंगा, उसे सब समझाने के बाद आर्या ने कॉल कट कर दिया। शिवी ये सब सुनकर ही खुश हो गई, कल आर्या उसके साथ नहीं आने वाला है, वो खुशी से नाचने लगी। थैंक यू सो मच भगवान जी, आज का दिन बहुत बुरा था पर किसी तरह से आपने मेरी हेल्प कर दी, ये साथ होता तो मजबूरन मुझे उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता, अब कोई भी बहाना बना दूंगी, वैसे भी मुसीबत कम नहीं है, कल उस नमूने से भी मिलना है जिसे मम्मा ने मेरे लिए सेलेक्ट किया है। आर्या बिल्कुल ठीक कहता है, उसे तो आराम से भगाया जा सकता है, बस उसके लिए मुझे, समझ गई मैं मुझे क्या करना है, शिवी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। तारों की कहानी, आपको क्या लगता है कल इनकी मीटिंग कैसे रहने वाली है, दोनों एक दूसरे को भगाने का प्लान बनाकर बैठे हैं और क्या होगा जब दोनों एक दूसरे को सामने देखेंगे, बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है कल का पार्ट, मिलते हैं कल के भाग पर, समीक्षा जरूर करिएगा।